अध्याय कैबिनेट मिशन पहले से आगे। आठवां सुझाव, कैबिनेट मिशन का सुझाव। इस प्रकार की बनी हुई संविधान सभा को तीन भागों में बांटा जाना था। इनमें से प्रत्येक भाग अपने अपने वर्ग के संविधान बनाएगा और निर्णय फिक्र करेगा कि क्या संपूर्ण देश के लिए संविधान बनाया जाए। तीनों वर्ग तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि मिलकर अर्थात संपूर्ण संविधान सभा समस्त संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। इसके अतिरिक्त एक परामर्शदात्री समिति भी बनाई जाएगी जो नागरिकों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा वर्जित प्रदेशों एक्सक्लूडेड एरियाज के अधिकार के विषय में परामर्श देगी। नम्मा संघ तथा वर्गों के प्रतिनिधि में एक ऐसा प्रावधान भी था कि कोई प्रांत अपनी संविधान सभा के बहुमत से पहले 10 वर्षों के पश्चात यह निर्णय कर सकेगा कि संविधान का पुनरक्षण किया जाए और यह प्रक्रिया प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात हो सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रांतों को यह भी अधिकार दिया गया था कि वह अपने वर्ग छोड़ भी सकते हैं, परंतु यह प्रक्रिया नवीन संविधान के अधीन वे आम चुनाव के उपरांत अपने अपने विधानसभाओं के निर्णय के अनुसार ही हो सकेंगे। दसवां, इस विधानसभा को शक्ति हस्तांतरण के संबंध मामलों के विषय में इंग्लैंड की सरकार के साथ एक संधि भी करनी होगी। ग्यारहवां, भारतीय रियासतों के विषय में मंत्रिमंडल या शिष्टमंडल ने यह घोषणा की कि जिस दिन से यह नया संविधान लागू हो जाएगा उस दिन से अंग्रेजी सरकार अपनी सर्वश्रेष्ठता की शक्ति का प्रयोग करना बंद कर देगी। उस अवस्था में वे सब अधिकार जो रियासतों के सर्वश्रेष्ठ शक्ति को दे रखे हैं पुनः उनके पास लौट जाएंगे, अर्थात वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। वे सभी राजनीतिक प्रबंध जो ब्रिटिश क्राउन तथा भारतीय रियासतों के बीच है समाप्त हो जाएंगे। रिक्त स्थान रियासतों को अंग्रेजों की उत्तराधिकारी सरकार अथवा सरकारों के साथ संबंध स्थापित करके भरना होगा, अथवा ऐसा न हो सके तो वे कोई राजनीतिक प्रबंध इन वर्गों का कर लें। एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना। मंत्रिमंडल या शिष्टमंडल का यह भी विचार था कि इस अतिरिक्त समय के लिए एक अंतरिम सरकार स्थापित की जाए जिसमें सभी विभाग, युद्ध विभाग समेत प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों के समर्थन प्राप्त भारतीय नेताओं को समेट जाए। मंत्रिमंडलीय कैबिनेट मिशन प्लान का सिंहावलोकन, ओवरव्यू। इस योजना का मुख्य गुण यह था कि संविधान सभा लोकतंत्रवादी सिद्धांत तथा जनता पर आधारित थी और पुराना गुरुत्व यानी वेटेज का सिद्धांत समाप्त हो जाना था। इसके अतिरिक्त सांप्रदायिक प्रश्न का निर्णय बहुसंख्या के आधार पर करना था, यद्यपि उसके लिए संरक्षणों का प्रबंध था। इसी प्रकार एक गुण यह भी था कि पाकिस्तान का विचार पूर्णतया छोड़ दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि संविधान सभा में ब्रिटिश सरकार अथवा उसके यूरोपीय अधिकारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त सदस्य नहीं थे और प्रांतीय विधानसभाओं में भी विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के समय इन यूरोपीय सदस्यों को अनुपस्थित रहना था। महात्मा गांधी के यह कहने पर कि यूरोपियों को कोई मताधिकार न हो, इन यूरोपीय सदस्यों ने स्वीकार कर लिया कि वे चुनाव में खड़े नहीं होंगे और केवल भारतीयों के चुनाव में ही मताधिकार का प्रयोग करेंगे। संयुक्त प्रांत की विधानसभा के अंग्रेज सदस्यों ने चुनाव में भाग तो लिया परंतु असम और बंगाल के सदस्यों ने नहीं। इस संविधान सभा के कार्य में अंग्रेजों की ओर से किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली गई, उसे अपनी इच्छानुसार काम करने दिया गया। इस योजना के निम्न अवगुण थे। पहला, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तो की गई परंतु पंजाब में सिखों के हितों की रक्षा नहीं हुई। दूसरा, प्रांतों के वर्गों के विषय में भी मतभेद थे क्योंकि उस प्रावधान के भिन्न भिन्न अर्थ लगाए जा सकते थे। मुस्लिम लीग यह समझती थी कि प्रांतों का वर्ग बनाना परम आवश्यक है और वह इन सभी प्रस्तावों का केंद्र है और इस प्रकार के विषय में किसी प्रकार का समझौता करने को उद्यत नहीं है। परंतु इसके विपरीत कांग्रेस यह समझती थी कि प्रांतों के लिए वर्ग बनाना वैकल्पिक है और कोई भी प्रांत किसी भी वर्ग में सम्मिलित हो सकता है, परंतु अंत में अंग्रेज सरकार ने लीग के विचार का समर्थन किया। तीसरा, संविधान बनाने की प्रक्रिया भी विचित्र सी थी। पहले गुटों और प्रांतों का संविधान बना और फिर केंद्र अथवा संघ का और इसी प्रकार गाड़ी घोड़ों के आगे जोत दी गई थी। यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार के द्वारा की गई है।